मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। मुख्य विषय के तहत मैं उसी विषय पर बात करूंगा जिस पर हम लोग पिछले सप्ताह से बात करते आ रहे हैं, पिछले दो सप्ताह से। आज मैं आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने का जो गणित होना चाहिए, इस टॉपिक पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन मेरे मन में फिलहाल एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौजूद है और मुझे लगता है कि अभी उपयुक्त अवसर है कि मैं उसके बारे में अभी ही आप सबसे बातें करूं। और खासकर इसकी आप उपेक्षा भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सच में सिविल सर्वेंट बनना है तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा और यहां तक कि अभी जो इंटरव्यू होने वाले हैं उनकी भी तैयारी होती रहनी चाहिए। मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वह प्रशासन से जुड़ी हुई बात है और इस प्रशासन का संबंध अभी जो हमारी वर्तमान स्थिति है उससे है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह मैंने अनुमान लगाने के बारे में बात की थी और वह बात इससे संबंधित थी कि कैसे हमारा जो वर्तमान प्रशासन है सही मायने में कोरोना के बारे में अनुमान लगाने में बुरी तरह से असफल रहा है, जबकि पूरी दुनिया और यहां तक कि हमारे भारत के विशेषज्ञ भी लगातार ये बात कह रहे थे कि दूसरी लहर आ सकती है, दूसरी लहर पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन चूंकि हमने पहली लहर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया था तो इसलिए शायद हम ज्यादा बहुत ज्यादा आशावादी हो गए थे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे और पब्लिक लापरवाही जो बरतने लगी उसके नतीजे में आज जो स्थिति बनी है उसको हम सब भोग रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उसका अनुमान लगाने में असफल रहे। देखिए, यहां जब मैं प्रशासन कह रहा हूं तो प्रशासन में दो लोग होते हैं या दो वर्ग होते हैं, एक होता है राजनीतिक वर्ग और दूसरा होता है प्रशासक वर्ग। जो राजनीतिक वर्ग है वो सर्वोच्च पद पर होता है ना, क्योंकि निर्णय उसे ही लेने होते हैं। और जो प्रशासक वर्ग होता है वो निर्णय लेने में मदद करता है, राजनीतिक वर्ग से कहता है कि ऐसा ऐसा किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, वो इसके बारे में बताता है, लेकिन निर्णय लेना उसके हाथ में नहीं होता है। जो बड़े मामले होते हैं उनमें जो राजनीतिक वर्ग होता है वह नेतृत्व करता है, वह निर्णय लेता है। तो ये दोनों ही मिल करके प्रशासन को बनाते हैं, राइट। इसी के साथ ही साथ अब देखिए कि एक तीसरा और वर्ग है इस प्रशासन के अंतर्गत ही, जिसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामले में जो सही राय देने वाला जो वर्ग हो सकता है वो आईएएस और आईपीएस का वर्ग नहीं हो सकता, या दूसरी जो सिविल सर्विसेज हैं उनका वर्ग नहीं हो सकता। इसमें या तो वैज्ञानिक हो सकते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, या डॉक्टर्स हो सकते हैं, ये विशेषज्ञ हैं। ये बताएंगे कि क्या किया जाना चाहिए, क्या स्थिति बन रही है, आगे किस तरह की स्थितियां आ सकती है। तो ये जो विशेषज्ञ वर्ग है यह प्रशासन को बताता है, आईएएस अफसर या इस तरह का की जो एक कमेटी होती है उन्हें बताता है, फिर ये अपनी बात राजनीतिक वर्ग के सामने रखते हैं और फिर राजनीतिक वर्ग उस पर निर्णय लेता है। और जब राजनीतिक वर्ग निर्णय ले लेता है तो फिर प्रशासन उस पर काम करना शुरू कर देता है। ये बात आपको समझनी होगी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप देखिए कि अगर विशेषज्ञ वर्ग जो है वो कह रहा है कि नहीं, दूसरी लहर आ सकती है और ये पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है, तो अब इस पर निर्णय लेना राजनीतिक वर्ग के हाथ में है कि वो क्या करता है। अगर आप सही पूर्वानुमान लगा करके व्यवस्था शुरू से करने लगते हैं तो स्थितियों को आप नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नुकसान होंगे लेकिन उतने नहीं होंगे जितने कि अन्यथा हो सकते थे। आप देखिए कि जब आपदा वगैरह आने की बात होती, तूफान वगैरह आने की बात, तो पहले से पता लग जाता है 3-4 दिन बाद तूफान आने वाला है, तो किस तरीके से जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करके दूसरी जगह पर बसा दिया जाता है। नुकसान तो होता है लेकिन बहुत कम होता है, और खासकर कम से कम हम जान माल के नुकसान की तो बहुत रक्षा कर लेते हैं। अब यहां पर आपको थोड़ा समय एक बात और, यहां मैं आपसे थोड़ी सी एक और बात बताना चाहूंगा कि देखिए, राजनीतिक वर्ग ने वेस्ट बंगाल में चुनाव कराने के बारे में कहा, इसे समझ लीजिए। जनरली ये सब बातें आपको पॉलिटिकल साइंस की किताबों में या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेंगी, है ना। समय पूरा हो गया था तो संविधान के तहत यह है कि वहां चुनाव कराया जाना चाहिए, और सरकार ने या कह लीजिए या राजनीतिक वर्ग ने कह लीजिए, हम यहां राजनीतिक वर्ग कहते हैं, चुनाव आयोग से यह रिक्वेस्ट की कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए जाने चाहिए, समय वहां का खत्म हो रहा है, राइट। आपको मालूम है कि जो हमारा चुनाव आयोग है वो बहुत ही ज्यादा अधिकार संपन्न संस्थान है, इसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। याद रखिए कि यहां चुनाव आयोग सरकार की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए आप पाएंगे कि जब भी कहीं चुनाव कराने की बात आती है तो बकायदे चुनाव आयोग के जो अधिकारी होते हैं वो उस जगह पे जाते हैं, उस स्टेट में जाते हैं, उस स्टेट की जो ब्यूरोक्रेसी होती है उनसे बात करते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं उनके लीडर्स से बात करते हैं, वहां के माहौल का जायजा लेते हैं और फिर यह निर्णय लेते हैं कि चुनाव कराया जा सकता है या नहीं। और जब उसे लगता है कि नहीं चुनाव कराए जा सकते हैं तो फिर वह डेट की घोषणा करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि यदि सरकार ने इच्छा व्यक्त कर दी है कि चुनाव कराए जाने हैं तो चुनाव आयोग इस आदेश को मानने के लिए बाध्य है। ये सरकार का आदेश नहीं होता है, ये उसकी एक मंशा होती है, इच्छा होती है, और संविधान के तहत वो सही भी होता है। अब आप इसे पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव पर अप्लाई करके आप देखें तो पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव कराए गए हैं, पहली बात तो 7 चरण में कराए गए हैं। चुनाव आयोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहा था कि सेकेंड लहर आने वाली है और ये धीरे धीरे अपने पीक पर पहुंच सकता है। और आप देखिए कि आफ्टर ऑल जो 7वें चरण के चुनाव हुए वहां तक पहुंचते पहुंचते चुनाव आयोग ने बकायदे जो रैलीज और दूसरी जो प्रचार तंत्र के जो तरीके होते हैं उनको प्रतिबंधित किया, राइट। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग अगर चाहता तो 2 निर्णय ले सकता था। पहला तो यह है कि नहीं, अभी चुनाव कराए जाने की स्थितियां नहीं है, खासकर कोरोना के माहौल में। अगर वह यह निर्णय लेता तो क्या होता, आप कह सकते हैं कि गड़बड़ हो जाती। फिर नहीं, गड़बड़ नहीं होती है, बकायदे राज्यपाल के ऊपर होता है। अगर वो चाहते तो वहां के जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं उनसे, मुख्यमंत्री से कह सकते थे कि ठीक है आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के रूप में अभी काम करते रहिए, आप बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकेंगे लेकिन प्रशासन चलता रहेगा। अगर उनको इस पर भी भरोसा नहीं है तो बकायदे वो राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकते थे और वहां राज्यपाल शासन लगाया जा सकता था, यानी कि प्रशासन चलता रहता, उसमें कोई संकट नहीं था। लेकिन निर्णय ये लिया गया कि नहीं चुनाव कराए जाएंगे, रैलियां हो रही हैं, भीड़ हो गई इकट्ठी और उसके नतीजे में आप देखिए कि क्या स्थिति हो गई। पश्चिम बंगाल में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या 50% के आसपास है, खासकर कैलकटा जैसे बड़े शहर में, कल्पना करके देखिए कि इतनी आबादी वाला शहर अगर इतनी बुरी तरह से संक्रमित हो रहा है तो आप चाहे कितने भी स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा तैयार क्यों न करके रखें, वो ढह जाएगा। दूसरी ओर फिर हम बकायदे हम अपने कुंभ मेले को देख रहे हैं कि जहां इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, रोज लाखों लोग आ रहे हैं, एक ही पानी में स्नान कर रहे हैं, राजनीतिक वर्ग और विशेषज्ञ वर्ग कह रहा है कि मास्क पहनिए, डिस्टेंस बना करके रखिए, क्या आपको लगता है कि कुंभ मेले में ऐसा किया जाना संभव था? ऐसा तो नहीं था कि अनुमान तो था कि संभव था लेकिन संभव नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुंभ मेले में पूरे देश के लोग आएंगे, अलग अलग स्थानों के लोग आएंगे, गांव से भी लोग आएंगे और फिर ये लौटेंगे भी। फिर ये हो सकता है कि ये बहुत बड़ा संक्रमण फैलाने का जरिया बन जाए और वो भी हमें धीरे धीरे अब दिखाई दे रहा है। तो अब आप देखें कि विशेषज्ञ अपने ढंग से ये बात कह रहे होंगे डेफिनेटली कि नहीं कुंभ मेले पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए, इसे स्थगित कर देना चाहिए, इसे प्रतीकात्मक कर दिया जाना चाहिए। अंततः आखिर कुछ दिनों के लिए वो प्रतीकात्मक किया भी गया, लेकिन इसके बारे में जो फाइनल निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो राजनीतिक वर्ग पर होता है और जब राजनीतिक वर्ग कोई निर्णय ले लेता है तो फिर प्रशासन वर्ग को उसे फॉलो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों अभी जो एक वर्तमान स्थिति थी इसको लेकर के मैंने प्रशासन किस तरीके से काम करता है, राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से चलती है, उसका एक स्वरूप प्रस्तुत किया है ताकि इसकी एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हो सके, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की डिमांड करती है। वो जो प्रश्न पूछती है मुख्य परीक्षा में खासकर, उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो देखना चाहते हैं कि ठीक है किताबों में आपने पढ़ लिया है, रट लिया है, लेकिन इसका व्यावहारिक ज्ञान आपके पास कितना है। चूंकि ये सारी चीजें अभी आप होती हुई देख रहे हैं इसलिए मुझे लगा कि नहीं इस पर बात की ही जानी चाहिए। हालांकि हम लोगों का जो मुख्य विषय है वो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है, लेकिन दोस्तों इस पर हम लोग बातें करेंगे, विस्तार के साथ बातें करेंगे, भरपूर बातें करेंगे और इस विषय पर पूरे हर संभव कोशिश मेरी होगी कि मैं न्याय कर सकूं। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं और आज मैंने चुना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का गणित क्या होना चाहिए। याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि आपको 40 प्रश्न बिल्कुल सही सही हल करने हैं। इसको लेकर के मुझे कुछ मेल मिले हैं, उनको आधार बना करके मैं यहां अब आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। देखिए जो 40 प्रश्न आपको हल करने हैं वो किसी भी तरीके से आप करें यह आपके ऊपर है। एक बार में आप उत्तर तक पहुंच जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने के बाद आप उत्तर तक पहुंचते हैं, या जो विकल्प दिए गए हैं 1 2 3 3 2 1 इस तरह से दिए जाते हैं ना, उनको देखने के बाद आप सही उत्तर तक पहुंचते हैं। सवाल इस बात का बिल्कुल नहीं है, सवाल केवल केवल और केवल इस बात का है कि आपको 40 प्रश्न सही सही हल करने हैं फर्स्ट राउंड में। याद रखिए, फर्स्ट राउंड में। यहां मैं आपको थोड़ी सी एक स्वतंत्रता दे सकता हूं ताकि आपके दिमाग का दबाव थोड़ा कम हो सके। जब आप 40 प्रश्न हल कर रहे होंगे तो मान करके मैं चलता हूं कि 40 के 40 सही नहीं होंगे, है ना। दिमाग पर दबाव रहता है क्योंकि जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें रेस अगेंस्ट द टाइम होता है, आपको समय के खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती है, तो समय का बहुत जबरदस्त दबाव रहता है दिमाग पर। तो मैं आपको इतनी छूट देता हूं कि इन 40 प्रश्नों में से 6 प्रश्न गलत हो सकते हैं, 6 प्रश्न गलत हो सकते हैं। अब शायद आप थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे, यानी कि आपके जो सही प्रश्नों की संख्या रह गई वो रह गई 34, राइट, 34 रह गई। लेकिन 6 प्रश्न चूंकि आपके गलत हो चुके हैं, इसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो 6 प्रश्न गलत हो जाने पर 2% मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो आपने 34% मार्क्स स्कोर किए थे और उसमें से 2% घट गए, तो आपके मार्क्स जो बचे वो हुए 32%, यानी कि फर्स्ट स्टेज में आप 32% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, राइट। चलिए हम इसे लेकर चलते हैं, किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में, कैसे भी करके आप सही इतने आंसर करके आते हैं। अब जो आपका सेकेंड स्टेज आता है, आप याद कीजिए कि मैंने आपको कहा था कि इसमें आपको 30 क्वेश्चन हल करने हैं, 30, और 30 आपको बिल्कुल छोड़ देने हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको कहा कि आपको बिल्कुल छोड़ देने हैं, याद रखिए कि ये वे इस तरह के प्रश्न होंगे जिनको पढ़ने के बाद बोलचाल की भाषा में अगर मैं कहूं तो यह कि हवा ही नहीं लगी। ये क्या पूछा गया है, क्या कहना चाह रहा है। खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादातर इसी प्रकार के होते हैं, कुछ और भी दूसरे किस्म के क्वेश्चन होते हैं, कुछ करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं कि आपके पल्ले ही नहीं पड़ता है। उनके साथ समय खराब करने का कोई तुक नहीं है, कोई विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कि नहीं मैं तो इसे हल करके रहूंगा। जिन्हें आप एक बार में पढ़ने के बाद समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिए। 30 में इस तरह के प्रश्नों की संख्या होगी, कुछ तो इस तरह के प्रश्नों की संख्या होगी। मैं मान करके चलता हूं कि लगभग 18-20 क्वेश्चंस तो ऐसे होते ही हैं। इसीलिए जब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो और शुरू में या बीच में या कभी कभी भी कहीं भी इस तरह के प्रश्न आ जाए तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। मान करके चलना है यार ये तो हमारे काम का ही नहीं है, छोड़ो ना, इस बॉल को हम मैडन ओवर भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर हम हिट नहीं करेंगे, हमें तो क्रीज पर जमे रहना है। ऐसे आपको छोड़ देने हैं। चलिए, इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी बेहतर हो तो इनके ऐसे प्रश्नों की संख्या 28 हो जाए, ऐसे प्रश्नों की संख्या 25 हो जाए, रह जाए, ऐसे प्रश्नों की संख्या 20 भी रह सकती है, लेकिन लगभग 20 तो रहती ही है। तो ऐसे होंगे ये 30 प्रश्न। अब जो 30 प्रश्न आप जो हल करेंगे ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ये 30 प्रश्न कौन से होंगे। दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको खासकर भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में वाला एक प्रश्न दिया था। अब समय मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है, कल मैं अपनी बात इसी प्रश्न से शुरुआत करूंगा। तो अब धीरे 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 आपके सामने वो पन्ने खुलते चले जाएंगे कि ये जो 30 प्रश्न हल करने हैं जो फर्स्ट राउंड में हम नहीं कर पाए हैं, इन्हें हम कैसे बेहतर तरीके से करें ताकि कम से कम 18 प्रश्न तो हमारे सही हो ही जाएं। और अगर 18 सही हो जाते हैं तो 32 आप पहले पा चुके हैं, 18 ये सही हो गए तो 50 तक तो आप पहुंच ही गए। आगे की बात मैं आगे चल करके बताऊंगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अमित सिंह कोची से, अलका चंदर, सूरज कुमार सेमापुर बिहार से, सौरभ पटेल, चंदन सिंह उत्तराखंड से और रवि आर्यन। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।